Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Narayana, 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 Narayana. Hum sab पूज्य माता जी के श्री चरणों की वंदना करते हैं। माता जी को हमने कई बार सुना है, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली और अविद्या को दूर करने वाली है। आपका एक एक शब्द, उसमें इतना जोश है, उसमें इतनी प्रेरणा है, वो हमारे जीवन के अज्ञान को दूर करता है। माता जी हमें मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन करेंगी। आप सबसे प्रार्थना है कि माता जी की बात को हम ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुष्पहार द्वारा माता जी का आप सबकी ओर से और प्रेमपुरी आश्रम की ओर से अभिनंदन करता हूँ।
ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितंयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।
मांडुक्य उपनिषद तीन प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। प्रस्थान यानी सिर्फ स्थलांतर नहीं है यहाँ, ये प्रस्थान यानी प्रकर्षण, कुछ ऐसा विशिष्ट प्रस्थान है जीवन का। ये हमारी आत्यंतिक और अंगत यात्रा है और ये प्रस्थान कुछ ऐसा है जहाँ जाने से वापिस आना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, ये प्रस्थान है। प्रस्थान ऐसा होना चाहिए स्थूल संबंध में ही। स्थूल संबंध में यानि जब आप साधक अवस्था में श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, ये प्रस्थान करने के लिए। जैसे आप यहां से दिल्ली प्रस्थान करते हैं तो प्रस्थान करने के लिए माध्यम क्या है भाई अपने पास? बोले हवाई जहाज है, ट्रेन है, हमारी कार लेके जाएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में, साधना में परमात्मा की ओर गति करनी है, परमात्मा की ओर प्रस्थान करना है। मुझे जाना कहाँ है? परमात्मा के पास। पाना क्या है? परमात्मा को। पानी क्या है? शांति, संतोष, पूर्णता। तो ये सब क्या है? ये सब परमात्मा के ही पर्याय है। तो कोई दो चार जगह नहीं है, शांति एक बाजू, परमार्थ दूसरी बाजू, ऐसा नहीं है। तो भाई हमारे पास वाहन क्या है? श्रवण मनन और निधिध्यासनात्मक वाहन है। पर ये वाहन बराबर होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। वाहन तो मैं आपको दे दूं, वाहन में क्या चाहिए? अगर कार से जाना, मैंने तय कर लिया कि मुझे बाई कार जाना है दिल्ली, तो क्या चाहिए? चार पहिए चाहिए कि नहीं? फोर टायर्स, एक स्टेयरिंग व्हील चाहिए, हाँ, सीट चाहिए, ब्रेक क्लच। मैं आपको ये सब दे देती हूँ, चार टायर दे देती हूँ, न्यू ब्रांड, फिर स्टेयरिंग व्हील दे देती हूँ आपको, बहुत अच्छा भारी वाला, अच्छी वाली सीट दे देती हूँ। तो बोले नहीं, ये अलग अलग कुछ नहीं चलेगा, पूरी कार असेंबल करके दीजिए तो ही कुछ चलेगा। तो ये सब पार्ट्स असेंबल किए हुए चाहिए, तो वो क्या है? सफर शुरू करने से पहले तो वो है ज्ञान के बहिरंग साधन, जिसे कहते हैं, ये है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। देखिए ये साधन जो है वो कभी नहीं छूटने वाले और छूटने भी नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं समझ सकते कि पहला प्रस्थान हो गया तो अभी साधन की जरूर नहीं, दूसरा प्रस्थान हो गया तो साधन की जरूर नहीं, ब्रह्मसूत्र पढ़ने लगे तो साधन की जरूर नहीं। ये सब छूट जाएगा पर ये साधन तो रहने ही वाला है। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, जैसे मैंने कहा, टायर अकेले नहीं चलेंगे, स्टेयरिंग व्हील अकेला पड़ा हुआ नहीं चलेगा। विवेक,
विवेक से आने वाला वैराग्य विवेक वाले पहले तो तय कर लीजिए, डिसाइड वंस एंड फॉर ऑल, डिसाइड क्या चाहिए, नित्य या अनित्य, टेम्पररी शांति या शाश्वत आत्यंतिक मुक्ति दुख से शाश्वत शांति, क्या चाहिए। और अगर जवाब आया कि भाई नित्य ही चाहिए, हमारी शांति हमारा आनंद रहना ही चाहिए, सुकून हमेशा ही चाहिए, और वो हमें शांति का पर्याय पता नहीं है, तो शास्त्र में विद्वानों ने जिसे जैसे जाना। देखो हमें कैसे पता लगता है कि शांति कहाँ है शास्त्र में, कोई गुरु ने बताया, कोई संत ने, कोई ऋषि मुनि ने बताया तभी होता है। तो शांति की हमारी सबसे पहली खोज क्या होती है पता है जीवन में? आप हम छोटे बच्चे होते हैं तब भी देखना, हम किन बच्चों के साथ कौन सा खेल खेलेंगे, पहले बच्चा जब नीचे उतरता है खेलने के लिए गार्डन में, तो वो सबको देखता है, सबको देखता है, और जो बच्चा जितना मजा ले रहा है जिस गेम में, बच्चा उसी के साथ मिल जाता है। अगर गेंद खेलने में आनंद आता है तो वहां चला जाता है, मिट्टी का घर बनाने में आनंद आता है, देखता है दो तीन बच्चे मिट्टी का घर बना रहे हैं तो वो उसमें जुड़ जाता है। क्यों? मिट्टी का घर देख के आनंद नहीं आ रहा, मिट्टी का घर जो बच्चे बना रहे हैं वो खुश लगते हैं, वो आनंद में लगते हैं, वो इतने मजा ले रहे हैं कि मेरी उपस्थिति का भी, बोलो मेरी जो उपस्थिति है उसके लिए भी वो बेखबर है, उसकी भी खबर नहीं रखते हैं, मुझे देखने का भी उन्हें फुर्सत नहीं है मुझे देखने से भी। तो ऐसा क्या है? जरूर ये करने से आनंद आ रहा होगा क्योंकि मुझे भी वो देख नहीं रहे हैं, दे आर निग्लेक्टिंग मी। तो ऐसे ही संसार में शांति की प्राप्ति हमारी शास्त्र को देख के नहीं होती है, सिर्फ परमात्मा की मूर्ति को देख के शांति की प्राप्ति की अपेक्षा इच्छा नहीं होती है। मूर्ति देखने से शांति मिलती है, शांति लेने के प्रयास जो है वो मूर्ति से, सिर्फ मूर्ति देखने से नहीं मिलते, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं मिलते। जिसको ये शांति या आनंद उपलब्ध हो गया है वो कोई ऋषि, वो कोई संत, वा ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सदा आनंद में रहता है, सदा शाश्वत आनंद में सुख में ही रहता है, उनको देख के भी हमें आनंद होता है, हमारी पीड़ा क्षण भर के लिए हम भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति हम देखते हैं कि कोई भी अपेक्षा के बिना, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति के बिना, कोई भी विशिष्ट देश और काल की अपेक्षा के बिना, ये तो खुश है, इसे खुश करने के लिए कोई बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं है, ये तो भीतर से ही आनंदित है। इतना ही नहीं, हम जब उनके साथ रहते हैं तो हमें भी आनंद आ रहा है। तो भाई क्या है? तो इनके पास कुछ ऐसा है, इन्होंने कुछ ऐसा पा लिया है जिस जो आनंद का स्रोत, आनंद का कारण बन सकता है। और अगर मेरे जैसा ही कोई जिंदा आदमी, कोई मनुष्य आकार आनंदित हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये हमारी शांति की पहली खोज है, हमारा जीवन यहाँ से शुरू होता है और हम पहुंच जाते हैं संतों के पास। पहुंचने के बाद हम पूछते हैं, फिर पूछना आवश्यक नहीं है, पहुंचना ही पर्याप्त है, फिर जो करना है वो गुरुजन करते ही है। तो गुरुजन सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम गुरुजन शास्त्र में जो जो भी परमात्मा के बारे में लिखा गया है, ज्ञान दिया गया है, उसकी बात शुरू कर देते हैं। आनंद का स्रोत जो है वो आनंद के स्रोत को वो शुरुआत से ही आपको देने लगते हैं। जिसके पास जो होगा वो ही देगा। आप कोई गुरुजनों के पास जाएंगे तो अभी टीवी में आप क्या देखते हैं 24 घंटे वो स्टॉक्स आता है ना, क्या क्या कहते हैं उसे आप, शेयर बाजार में, वो नहीं बोलने लगेंगे फटाफट। अभी मेमोरी तो उनकी होती है तो मुखपट हो जाएगा थोड़े नंबर्स, तो वो नहीं कहेंगे कोई दूसरी संसार की बात नहीं। जिसके पास जो भीतर होगा वही बाहर आएगा। तो आनंद का स्रोत ऋषि मुनियों को, गुरुजनों को जिस प्रकार जैसे भी मिला वही उनके मुख से निकलता जाएगा, और हमें उनकी वाणी से, उनकी अनुभूति से ये लेते जाना है, ये लेते जाना है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी इतने भर जाएंगे उनके अनुभव से। इसीलिए देखो गुरु, ये जो शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति है, अब आपको पता लगेगा आप बहुश्रुत है, सब यहाँ के श्रोता बहुश्रुत है, इसीलिए हमें बहुत आनंद आ रहा है। एक बात, आपने सुना ही होगा ज्ञान कैसे मिलता है भाई, तो बोले श्रुत्या युक्त्या और अनुभूत्या। सुना है ना ये बात? तो श्रुत्या यानी ये श्रुति का ज्ञान, युक्ति यानी श्रुति के अंदर जो युक्ति होती है मनन चिंतनात्मक, उससे ज्ञान होता है। और तीसरी जो बात है अनुभूतियां, ये अनुभूतियां जो है वो आप संतों के साथ, ऋषि मुनियों के साथ, ज्ञानी जनों को जब आप सुनेंगे तब उनकी अनुभूति वो धीरे 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 अंदर डालते रहते हैं। अनुभूति में कुछ वो विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, अनुभूति यानी कुछ चमत्कार नहीं है। अनुभूति यानी क्या कि जो जो वाक्य वेदांत में, शास्त्र में, उपनिषद में लिखा हुआ है वो मेरे जीवन में किस प्रकार फलीभूत हो, ट्रांसफॉर्म हो, यही कहते हैं। जैसे दूध का एक ग्लास है, दूध में क्या है तो भाई बहुत सारे विटामिन है, प्रोटीन्स है, कैल्शियम है, तो दिखता है क्या? हाँ, पृथक्करण अंदर है, दिखता है? नहीं, दिखता नहीं है, पर है, ऐसा साइंस बताता है कि है। और जब आप पीते हैं उसे तो अंदर का, भीतर का जो मैकेनिज्म है, शरीर का जो मैकेनिज्म है वो क्या करता है? हड्डी में कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम अलग करके हड्डी में दे देता है, प्रोटीन्स अलग करके दे देता है, जो जहां जिसकी जरूरत है वहां वहां वो पृथक्करण करके भेज देते हैं। बस इसी प्रकार ये शास्त्र के जो वाक्य है, शास्त्र के जो मंत्र है, वो पृथक्करण करके क्या उनमें से लिया जाता है, अनुभव किसका किया जाता है। सब शब्द अनुभवात्मक नहीं है, शास्त्र में जो शब्द है 90% अनुभव तक पहुंचने के लिए ही है, ये बात ख्याल रखना। नहीं तो क्या हो जाएगा, जो कुछ भी लिखा है उसे आप ऐसा ही सीधा ही अनुभव करने बैठेंगे तो पार नहीं आएगा और हम विक्षिप्त तो ही हो जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकेंगे। तो क्या चीज फेंक देनी है, क्या चीज ले लेनी है? अभी इसको, ये एक गिलास दूध में कैल्शियम की मात्रा जो हम निकाले ना तो बहुत कम होती है, बहुत ही कम। हमारे काम की तो इतनी बूंदी है, पूरे दूध के ग्लास में एक बूंद भर भी जो मिनरल्स या कुछ भी जो मिल सकता है वो बूंद भर ही है एक ग्लास में। काम का तो इतना ही है, बाकी सब क्या है? वेस्टेज है, वो निकल जाता है। यानी जो भी यहां शास्त्र के जितने भी मंत्र है उसमें जो नेक्टर जो है, जो अनुभव है, उसका जो मकरन जो है, ये अनुभूति है। तो अनुभूति यानी ये मंत्र में अनुभूति आपको क्या होगी? आपको यानी मुझे, साधक तो मैं हूं और मैं यात्रा पे निकली हूं। ऐसे ही आप सब यहां जितने भी हैं, हम बैठे हुए सब सोचे कि ये मेरी यात्रा प्रारंभ हो रही है, मैं परमात्मा के प्रति जा रहा हूं। कोई ऋषि नहीं गया, कोई संत नहीं गए, कोई उपनिषद के वक्ता या श्रोता की बात नहीं है। अगर कोई उपनिषद का वक्ता है तो ये जो यहाँ से वक्तव्य हो रहा है, अगर कोई उपनिषद का श्रोता है तो वो मैं ही हूँ उपनिषद का श्रोता, तो ही ये श्रोतव्य और वक्तव्य में से जो अनुभव प्रकट होगा वो मुझे कुछ, उससे मेरी कुछ साधना हो सकेगी। तो ये एक बात है, ये तीन बात हो गई, श्रुत्या युक्त्या अनुभूत्या। एक और बात हमने की, विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्षुता कायम रहनी चाहिए। ये रहने के बाद अब आपकी जो यात्रा शुरू हो रही है, कौन सी यात्रा है? तो बोले श्रवण मनन और निधिध्यासनात्मक यात्रा है। तो पहली यात्रा हमारी बात शुरू हुई थी प्रस्थान से, अब हम प्रस्थान में जा रहे हैं, अब प्रस्थान शुरू कर रहे हैं। पर एक बात याद रखना, वहां जाके वापस आना नहीं है, तैयारी है तो ही प्रस्थान शुरू करना। किसी में मन रह गया है, हाँ, कोई दृश्य में कोई रूप की वासना रह गई है तो प्रस्थान मत करना, रुक जाना और विश्लेषण करना कि ये रूप प्राप्त कर लूं या जाने दू, छोड़ दू। रूप का भी जो कारण है, रूप का भी जो रूप है, चक्षु उसे प्राप्त में कर लूं, सोच लेना, विवेक विचार कर लेना, जल्दबाजी नहीं है। गाड़ियां तो बहुत छूटती है, गाड़ी रुक गई है क्या? अभी तो ज्यादा ट्रेन निकाल दी है, तो चिंता मत करना, रुक जाना। पर अगर यात्रा शुरू कर भी दी, गलती से सब जा रहे हैं इसलिए भी मैं जा रही हूं, ऐसे भी धक्के धक्के में चढ़ गए, अभी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, बहुत गर्दी होती है तो एक धक्के में चढ़ जाते हैं, तो गलत ट्रेन में गलती से चढ़ गए, यात्रा 5 मिनट के बाद वाली ट्रेन में करनी थी, और गलती से आगे की ट्रेन में चढ़ भी गए तो अब सोच लेना कि अगर चढ़ ही गए हैं, आप गाड़ी में चढ़ गए हैं अभी, तो चढ़ ही गए हैं तो अब वो सब पीछे की वासना जो है उसे आप छोड़ ही देना। तो वो कौन भुगतेगा उसका क्या होगा, वो कौन भुगतेगा उसका क्या होगा, उसका विचार जो है वो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, वो उसे ही करने दो। क्यों खामखा हम देख के हमारी आंख बिगाड़े, हम ज्यादा श्रवण ज्यादा संसार को सुन के हम क्यों ज्यादा प्रपंची हो? वो जो भी कुछ है उसका जो कारण परमात्मा है उसे करने दो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ये जो प्रस्थान हमने शुरू किया है तो वापस आना यहाँ नहीं है, तो वापस नहीं आना है। अगर ये प्रस्थान जो है परमात्मा के प्रति है तो मिलेगा क्या, मिलेगा क्या तो पूर्ण शांति, शाश्वत शांति, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक जो तीनों ताप जो है, तीनों ताप से मुक्ति जो है वो मुक्ति का आनंद हमें शाश्वत अभी इसी समय प्राप्त होगा अगर ये प्रस्थान किया दो। तो पहला प्रस्थान स्मृति प्रस्थान है यानी श्रीमद् भगवद गीता का प्रस्थान। दूसरा जो प्रस्थान है ये श्रुति प्रस्थान है, ये श्रुति प्रस्थान में हम अब प्रवेश करने वाले हैं। तो मांडुक्य उपनिषद जो है वो अथर्व वेद अंतर्गत है, उसमें मंत्र विभाग होता है, ब्राह्मण विभाग होता है, आरण्यक विभाग होता है, संहिता विभाग होता है। तो यहाँ उपनिषद के अथर्ववेद के ब्राह्मण विभाग के अंतर्गत ये मांडुक्य उपनिषद है। खूब ही संक्षिप्त, जो काया जो है वो बड़ी छोटी है इसकी, सिर्फ 12 मंत्र का उपनिषद है। पर ये 12 मंत्र के उपनिषद में बहुत ही गूढ़ रहस्य दिए गए हैं। जैसे आपको टेलीग्राम करना है, अर्जेंट कुछ भी मैसेज भेजना है, आपके घर बहुत सारे पोस्ट में लेटर्स आते हैं, सबसे पहले आप किसे खोलते हैं? कोई आपका परम मित्र है, उसने लंबा 5 पेपर का लेटर लिखा है और वो आपका परम मित्र है, बहुत स्नेही है, तो उसका 5 पन्ने का बुकलेट जैसा लेटर पढ़ेंगे या पहले आप क्या देखिए? आप जरा याद कीजिए, जब भी पोस्ट की इतनी 5-6 कागज में आपके हाथ में अगर थमा दूं तो पहले हम क्या करते हैं? देखिए, कभी भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं कहेगा कि पहला लेटर देखेंगे, आराम से फोड़ेंगे, फिर करेंगे। पहले आप 5 लेटर देख लेंगे कि नहीं, कि क्या क्या है, था ये होता ही है। अब ना कहेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, होता ही है। क्या ये अनकॉन्शियसली हो जाता है? हाँ, मन क्या करता है, मन पहले प्रायोरिटी देने लगता है, ये मन की आदत है। पर हो क्या गया है, मन की जो आदत जो है प्रायोरिटी देने की, उसकी प्रायोरिटी देने की जो कक्षा जो है वो उलट सुलट हो गई है। प्रायोरिटी जिसे अंतिम देनी है, ये आध्यात्मिक साधना की अवस्था की बात करती हूँ, उसकी प्रायोरिटी पहली आ गई है। जैसे आप लेटर्स देखते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? भाई टेलीग्राम को, शॉर्ट लेटर्स को, अर्जेंट लेटर्स को। अर्जेंट लिखा हुआ होता है और अर्जेंट लेटर में क्या हुआ होता है, सिर्फ काम की ही बात कही जाती है, फिर आगे पीछे कुछ नहीं। वो लेटर की शुरुआत ऐसे नहीं होती है, केम छो, कैसे है, कुशल हो, ऐसी बातें यहाँ चलती नहीं है। ठीक है, क्या तो सीधी बात कर दी, भाई ये है, ये करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, ये करना है, बात खत्म हो गई, यहाँ इधर उधर की बातें नहीं है। तो इसका रूप देख के, वो लेटर का रूप देख के आप क्या है, आप सावधान हो जाते हैं और तत्क्षण और सब कुछ जो आप वो टाइम पे कर रहे होते हैं, कोई भी भोग, शब्द स्पर्श रूप रंग के जो भी भोग कर रहे होते हैं, तत्क्षण तो वो रुक जाता है कि नहीं, कि भोग भी करते हैं, टीवी भी देखते हैं और टेलीग्राम भी पढ़ते हैं? नहीं नहीं टेलीग्राम क्या, ऐसे पढ़ा जाता है सब भोग अपने आप भोग छोड़ने के लिए क्या करते हैं? कोई कर्म किया इच्छा की भोग छोड़ने की? नहीं, क्या हुआ, अपने आप छूट गया। बस ऐसे ही जब ये श्रुति प्रस्थान शुरू हो जाता है, यहां से एक स्टेटमेंट आता है, उदाहरण के मिसाल पर, ओम इति एतत् अक्षरम इदगम सर्वम, ये पहला स्टेटमेंट आ गया। ओहो, यहां उपनिषद सीधा ही हमें बता रहे हैं ओम ओम है और ये इति बस बात खत्म हो गई। और ये ओम क्या है? तो बोले एतद ओम इति कहके क्या कह दिया कि यही बस यही है पूर्ण है। अब जो है बात वो उसकी बात मैं कर रहा हूं। उपनिषद ने सीधी ये बात कर दी तो जब उपनिषद कहते हैं कि ओम ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है, तो अभी जितनी भी यहां बैठे बैठे भी हमारे मन में कुछ भी विचार अगर आते होंगे व्यवहार संबंधी, कोई व्यक्ति संबंधी, कोई काम छूट गया है उसके संबंधी, सुबह मोबाइल पे बात की थी पर लाइन कट गई उसके संबंधी, किसका होगा क्या होगा, तो तत्क्षण ये सब विचार अपने आप मिट जाते हैं। ये उपनिषद के मंत्र की बहुत बाह्य शक्ति है, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसी शक्ति है। बाकी किसी की भी हिम्मत है कि हमें हमारे भोग से छुटकारा दिया जाए, किसी की भी हिम्मत है कि हमारे भोग रुकवा सके? कोई किसी को आप जाके कह सकते हैं अगर अरे आप ये भोग मत करो, ये मत खाओ, ये मत देखो, इसे स्पर्श मत करो? नहीं, आप किसी के भी भोग अगर स्थूलतया शारीरिक व्यवहारिक दृष्टि से आप रोक भी दिए ना उसको, तो मन से आप रोक सकेंगे क्या साहब? मन से जो उनका स्वैर विहार चलेगा, और जब शारीरिक भोग आप रोक देंगे तो मन से जो विहार चलेगा भोग का वो ज्यादा होगा, उसे आप रोक सकते हैं? हिम्मत है तो रोक दीजिए। आप पे अगर ताकत है, कोई कहेगा कि बाह्य भोग तो मेरा आपने रोक लिया, भीतर का भोग आप रोक दीजिए, तो बोले हम में वो शक्ति नहीं है, वो मंत्र की शक्ति उपनिषद में है, ये शास्त्र में है। क्या है? ओम इति कह दिया तो अब हम सब छोड़ के एक क्षण के लिए तो विचार किया कि भाई ये सब कुछ में ये ओम कहां से आया? आत्मा बोले होते तो चलो ठीक है कि कोई आत्मा जैसा है जो हमारा सुना हुआ है और हम उसको परमात्मा मान सकते हैं, हाँ या रेडी, परमात्मा बोले तो मान सकते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है। पर हम अगर यहां से कहेंगे कि भाई परमात्मा इति एवेदम सर्वम, तो क्या रूटीन में चल रहा है वो तो है ही, तो चौंक नहीं जाएंगे आप रुक नहीं जाएंगे। और यहां व्यवस्था क्या की गई है, क्षण क्षण में, शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर आपको रोकना चाहता है, बस इतना समझ लीजिए, प्रयोजन इतना ही है। और जब इतना प्रयोजन हमने किसी का हार्द नाप लिया ना, देखिए कभी घर में बैठे होते हैं, कुछ वडील होते हैं, वो भी बैठे हैं साथ में फैमिली मेंबर्स, और अगर ऐसी कुछ टॉपिक निकला, ऐसी कुछ बात निकली, और वो जो घर का मुखी जो होता है वो अगर कुछ कमेंट कर दे या ऐसे कुछ देख ले, तो वो बात तत्क्षण रुक जाती है। क्या हुआ? वो इंटेंशन नाप लिया बच्चों ने कि भाई अभी इसकी इच्छा नहीं है कि ये बात की जाए, हम क्या करते हैं तत्क्षण वो बदल देते हैं। हम हमारे गुरुजनों के साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बात निकली, कोई ऐसे विषय पर चर्चा निकली, और वो चर्चा रुकवा देनी है, गुरु अगर बोलते बंद हो जाए या कुछ इशारा कर दे कि अलम अलम ऐसा ही कह दे, तो हम क्या कहते हैं तत्क्षण हम रुक ही जाते हैं। बस यही जो है ये क्या कहते हैं, हम उसको उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। और क्या है कि छोटे से इशारे में हम समझ जाते हैं कि ये बात को अभी बंद करनी है, ये कर्म अभी बंद करना है, बस ये छोटा सा इशारा है, ठीक है। और ये जो छोटा इशारा है उसे समझ लेना हमारे सबकी फर्ज है, इतनी तो रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। ये बुक सर पे रख के 24 घंटा षोडशोपचार की पूजा करेंगे तो भी प्रसन्नता परमात्मा को नहीं मिलेगी। प्रसन्नता कब मिलेगी? जब उसके भीतर के मंत्र मुझे क्या कहना चाहते हैं, मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन अपेक्षित है, ये वाक्य से, ये शब्द से, ये अक्षर से, अगर इतना आपने पहचान लिया, कोई जिंदगी में भी कभी पूजा क्या कुंकू भी हाथ में नहीं लगाया होता होगा, तो भी आप सब पूजा आपने कर ली अगर आपने इसे रिक्वेस्ट। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उपनिषद लेके बैठे हैं, श्रुति का प्रस्थान है, और श्रुति का जब वक्तव्य दिया जाता है तब ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा का विरोध है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुंकू चंदन नहीं करना है, पर ये जो विचार जो है, ये जो विपरीत विचार भी आने लगे कि ये क्या सब नहीं करना है, वो विचार की भी अपेक्षा यहाँ नहीं रखता है। जो हम कहते हैं वही सुनना है, दैट्स ऑल। और ये जब कोई और हमारे ऊपर कोई हावी हो जाता है, कोई सिर पे चढ़ जाता है जिसका बले न जबरदस्ती से हम मानने लगते हैं, कोई खींच लेता है, तो वो हमसे बड़ा होगा या छोटा, इतना मुझे बता दीजिए। हमारे ऑफिस के कर्मचारी या जो हमारा काम पूरे दिन करते रहते हैं, कोई ना कोई तरह जिससे हम काम करवाते हैं, वो हमारे सिर पे चढ़ सकता है क्या? चढ़ सकता है, पर एक ही बार। फिर आप क्या करेंगे? उसे आप दूर कर देंगे या समझा देंगे कि दूसरा दोबारा ऐसा नहीं करना, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे सिर पे कौन चढ़ सकता है? कौन हम पे हावी हो सकता है? कौन हमारे पास कुछ करवा सकता है जो हमसे बड़ा होगा? तो भाई ये उपनिषद जो है, ये जो मंत्र जो है, वो परमात्मा के संबंधी ही है, और परमात्मा निश्चित बड़ा है। जब तक वो परमात्मा के पूर्ण रूप को हम नहीं जान लेते, निश्चित वो परमात्मा हमसे बड़ा है। और ये कुछ ऐसा लगता है, देखिए, जिससे हम आकर्षित होते हैं, जो हम पे हावी होता है, हमारी बुद्धि को ग्रह लेता है, बंद कर देता है। और जैसे ये उपनिषद की बुद्धि, जैसे ये उपनिषद के ऋषि की इच्छा है, ऐसे ही हमारा मन सोचने लगता है। तो समझ लेना कि ये कोई मुझसे ऊपर है, और ये कोई व्यक्ति नहीं है। देखिए, ये कोई मौलिक नहीं है, ये कोई शरीरदारी नहीं बोल रहा है। ओहो, उपनिषद के मंत्र कोई शरीर नहीं है। ओम का शरीर क्या? ओम के रूप क्या है? रंग क्या है? आकार क्या है? ओहो हो, कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या हो गए एट्रीब्यूट्स? ये तो एट्रीब्यूट आत्मा के हो गए भाई। यत्तद अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णनम, ये तो वो अक्षर जो है, जो परमात्मा है, उसी की अभिव्यक्ति हो गई। ओहो, तो याने ये जो अक्षर है, ये जो परमात्मा है, कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, और वो मुझ पे हावी हो रहा है, तो निश्चित ये परमात्मा ही है। और अनुभूति कहाँ होगी? ये जो हमारी बुद्धि रुक जाती है ना, सोच नहीं सकते। अब ये ओमकार के बारे में अभी तो बात भी शुरू नहीं हुई और हमारी सोच रुक गई है। ये व्यवहार संबंधी बुद्धि जो हम लेके आए हैं, वो काम नहीं लगती। जो भी डिग्री हम महाविद्यालय से लेके आए हैं, वो जितना हम पढ़े हुए हैं, वो सब जुटा देते हैं ये समझने के लिए, तो जवाब ना आता है। हाँ, ये भी छूट जाती है, ये भी रुक जाती है। वो परमात्मा इस प्रकार मुझे बांध लेता है, तो मेरे अनुभव में ये कैसे आता है? देखिए, ये जो शब्द जो है, शब्द के द्वारा परमात्मा हमारे कानों में गए, श्रवणात्मक, के ओम जैसा कुछ है, परमात्मा जैसा कुछ है। और जब हमारी बुद्धि इसके बारे में कोई भी प्रकार के विचार नहीं कर सकती, तब आपको जो फीलिंग आता है ना, फीलिंग क्या है? अभी अभी यही क्षण पे आपको क्या लग रहा है, आप भीतर से विचार कीजिए, तो आप में से सबका जवाब आएगा कि हमें थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। थोड़ा आश्चर्य एटले एक आश्चर्य यानी थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ये होता क्या है? उपनिषद कहना क्या चाहते हैं? ये किसका वर्णन हो रहा है? ये प्रश्न हो रहा है, ये आश्चर्य हो रहा है।